243 नंबर की गाथा। यदिदव्ये पज्जाया विविज्यमाणा तिरोहिदा सन्ति ता उपपत्ति विहला पडिपहिदे देवदत्तेव पडिपहिदे। अथ सांख्यादय एवं वदन्ति। सांख्य मत वाले बोलते हैं कि द्रव्य में जीवादिक पदार्थों में पर्याय होती जरूर है लेकिन वो आच्छादित रहती है, विद्यमान होते हुए भी वो आच्छादित यानी ढकी हुई रहती है, वही उत्पन्न होती रहती है और हमेशा पाई जाती है। तो ऐसी उनकी मान्यता है सांख्य मत वालों की। तो आचार्य कहते हैं कि कोई भी द्रव्य हो, चाहे जीव पुद्गल आदि कोई भी पदार्थ हो, उनमें पर्याय नर नारक आदि जीव की पर्याय हो जाएंगी, स्कंद आदि पर्याय पुद्गल की होंगी, वे सद्रूप अस्तित्व में होते हुए भी अंतरलीना डिरोहिता अब भीतर ही भीतर छुपी रहती है, ऐसा अगर मानते हैं तो अप्रादुर्भात भूता संति विद्यन्ते यदि चेत, अगर ऐसा मानो कि प्रकट न है नहीं है तो भी विद्यमान है, तो फिर पर्यायाणाम उत्पत्ति उत्पादन निष्पाद निष्पत्ति विफला निष्फला निरत, तो फिर उनका होना ही व्यर्थ है, जो होते हुए भी सामने नहीं है अप्रकट है उनका होना ही व्यर्थ है। पट पिहिते देवदत्ते, जैसे ये पड़ी पिहिते लिखा है और फिर टीका में पट पिहिते लिखा, ठीक है, पट पिहिते का मतलब कपड़े से ढके हुए देवदत्त के समान। यथा वस्त्राच्छादिते देवदत्ते, जिस प्रकार कपड़े से आच्छादित देवदत्त पर, तस्य देवदत्तस्य वस्त्रे उत्पत्तिर न घटते, उस देवदत्त की उत्पत्ति वस्त्र में घटित नहीं होती। तथा उसी प्रकार सर्वे नर नारक बुद्ध्यादय हैं, उसी प्रकार नर नारक बुद्धि आदि जितने भी पदार्थ तुम मान रहे हो सांख्य मत वाले, प्रकृतो लीना वो प्रकृति में तल्लीन है विलीन है, तरही ऐसा मानने पर अंगुल्यग्रे हस्तिशत यूथम कथम न जायते, तो अगर सारी चीज़ें किसी भी एक जगह रह जाती है कहीं भी अंतरलीन रहती है तो एक उंगली के ऊपर 100 हाथियों का झुंड क्यों नहीं रह सकता। मतलब ये हुआ कि पर्याय अप्रकट है फिर भी है ऐसा उनका मानना है। तो फिर बोले कि ऐसा अगर मानते हो तो जैसे वस्त्र के अंदर आच्छादित देवदत्त है उसी प्रकार उंगली के ऊपर 100 हाथियों को भी रख लो, कहीं भी कुछ भी तुम मान्यता बना लो, तो ये कैसे बन सकता है, कुछ प्रामाणिकता भी होनी चाहिए ना वचनों में। इति दूषण सद्भावात अविद्यमान पर्याय जायन्ते, अविद्यमान पर्याय इस प्रकार से दूषण युक्त हो जाती है। सव्वाण पज्जयाणम अविद्यमानान होदि उपपत्ति कालायी लद्धीये अनायिणी हणम मिदव्वम्मी। अनादि निधन द्रव्य में कालादिक लब्धि द्वारा सब पर्याय जो अविद्यमान है उनकी भी उत्पत्ति होती है, माने अभी जो पर्याय नहीं है वो द्रव्य में उत्पन्न हो सकती है। कालादि लब्धि मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चारों की उपलब्धि हो जाए, चारों का समागम हो जाए तो फिर वो पर्याय प्रकट हो सकती है। जैसे हमने एक दिन दृष्टांत दिया था कि गाम की गुठली है और गुठली को अगर अग्नि में डाल दो तो राख की पर्याय प्रकट होगी, मिट्टी में डाल दो तो फिर नया अंकुर निकल जाएगा। तो जैसे उसको मतलब संगति मिलेगी, जैसा वातावरण मिलेगा उस प्रकार से उस पदार्थ में से पर्याय प्रकट होती हैं। दव्वाण पज्जयाणम धम्म विवक्खाय कीरे बेहु वत्थु सरुवेण पुणु नहीं भेदो सकदे काऊ। द्रव्य और पर्याय इन दो में धम्म विवक्षा है, धर्म की विवक्षा से, धर्म यानी लक्षण की विवक्षा से, यानी लक्षणों की दृष्टि से द्रव्य और पर्यायों में भेयो की रे भेद किया जा सकता है। यानी द्रव्य का लक्षण अलग है और पर्याय का लक्षण अलग है, ऐसे लक्षणों का भेद तो हो सकता है, लेकिन वत्थु सरुवेण, वस्तु स्वरूप पर अगर ध्यान दें तो फिर वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय तीनों साथ में है, पर्याय कहीं अलग नहीं है और फिर द्रव्य कहीं अलग नहीं बैठा हुआ है, ये सब एक साथ है, एक ही सत्व में है। नहीं भेद हो सकते काम, इनका भेद नहीं किया जा सकता। यदि वत्थु दो विभेदु पज्जे दव्वाण मण्ड से मूढ़ तो निरवेखा सिद्धि दुण्णम पिय पावदेणियमा। यदि वस्तु से भी दोनों को अलग अलग मानोगे पर्याय द्रव्य को, तो हे मूढ़, यदि तुम ऐसा मानोगे कि पर्याय अलग वस्तु है और द्रव्य अलग वस्तु है, ऐसा पृथक तुम मान लोगे तो क्या होगा? दुण्णमपी, दोनों की सिद्धि, सिद्धि यानी उपलब्धि, नियमा निरवेखा, नियम से एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ही हो जाएगी। द्रव्य भी पर्याय की अपेक्षा नहीं रखेगा और पर्याय भी द्रव्य से रहित होगी, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि सर्वमेव नाणम नानारूपे हि संठिदम एकम तोर्णवि किंपि विनेयम नेण विना कहम नाणम। बहुत सुंदर तर्क देते हैं जैनाचार्यों के तर्क इतने अकाट्य रहते हैं, क्योंकि सामने से कुछ भी कोई उल्टी सीधी बात करे लेकिन जवाब इतना सुंदर होगा कि बिल्कुल बोलते बंद। क्या उस एक कह रहा है कि एक अन्य मत में ऐसी भी धारणा है कि सब कुछ ज्ञान स्वरूप है। हमने एक दिन कहा था आपसे, याद हो आपको, योग वासिष्ठ महारामायण में ऐसा है कि ज्ञान उसी को जानता है जिसके पास ज्ञान हो। अचेतन वस्तु को ज्ञान जान नहीं सकता और संसार में कुछ भी अचेतन नहीं है, सब में चेतना है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं यदि सर्वमेव नाणम, सब यदि सब कुछ ज्ञान रूप है, नाना रूपे ही संठिदम एकम, और अगर तुम ये मानते हो कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक बर्तनों में पानी भर दो तो फिर अनेक रूप होता है, मतलब उतने सारे प्रतिबिंब पड़ जाते हैं, उसी प्रकार एक ही सदाशिव है, एक ही परमात्मा है और ये सारे जितने जीव जंतु हैं और जितने पदार्थ हैं वो सब उसी की रचना, उसी की छाया है, वो सब ज्ञान स्वरूप है, सब चेतन स्वरूप है, सब परमात्मा के रूप है। अगर ऐसा मानते हो तो फिर तो नवी किम्पि विनयम, तो फिर जानने योग्य कुछ बचता ही नहीं, जानने योग्य कुछ बचता ही नहीं, सब जानने वाले हैं तो फिर जानने योग्य क्या बचा? सभी ज्ञान रूप है, सब कुछ जान, सब जानने वाले हैं तो फिर जानने योग्य कौन रहा? तो जानने योग्य चेतन अचेतन सब होना चाहिए। तो अगर तुम सबको चेतन मानते हो तो फिर ये समस्या आएगी। इसकी टीका देख लेते हैं। अतः सर्वमेव ज्ञानम एकम ज्ञानाद्वैतम ज्ञेय मंत्रेण नाना रूपेण। हाँ, मतलब उन्होंने ये बोला कि कुछ भी जानने योग्य नहीं है, ये उनकी मान्यता है, सब कुछ ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो फिर जो ज्ञान किसी को जानता नहीं वो ज्ञान ज्ञान कैसा, ये कह रहे हैं, क्योंकि जानने योग्य कुछ नहीं है, सब कुछ जानने वाले हैं, जानने वाला है, तो फिर जानने योग्य कुछ भी नहीं रहा तो ज्ञान जानेगा किसको? और जो जो किसी को नहीं जानता वो ज्ञान कहेगा, ये है। गड़पड़ जड़ दवाणी ही नी सर्ववाणी सुप्रसिद्धाणी नाणम जाने दी जदो अपादो भिन्न रूवाणी। घट पट आदि जितने जड़ द्रव्य हैं ये सब सुप्रसिद्ध ज्ञेय स्वरूप है, यानी सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारी वस्तुएं जानने योग्य हैं। बाजार में भी किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो फिर देख जान करके ही तो खरीदते हैं, तो वो सब जानने योग्य पदार्थ। नाणम जदो जाने दी अपादो भिन्न रूवाणु, ज्ञान जो होता है वो अपने से जो भिन्न पदार्थ होते हैं उनको जानता है, इसलिए जानने योग्य पदार्थों को तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी जानने योग्य नहीं है, सब कुछ ज्ञान रूप है और ज्ञान किसी को जानता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर ज्ञान काहे का अगर जानता नहीं तो। जम सव्वलोय सिद्धम देहम गेहादि बाहिरम अत्थम जूतम पिणाणम नाणमण्णदि न मुणदिसो नाणनामपि। जो सर्वलोक में सिद्ध है, देह गेह माने घर आदि जितने बाह्य अर्थ बाह्य पदार्थ हैं, सारी दुनिया जानती है कि ये बाह्य पदार्थ हैं, जो तंपी नाम नाण मण्णदि जो उनको भी ज्ञान रूप मानता है, ज्ञेय रूप नहीं मानता, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि सो नाण नामपि न मुण्णदि, वो ज्ञान का नाम भी नहीं जानता कि ज्ञान क्या वस्तु होती है। जो जाने सो ज्ञान, ये ज्ञान की परिभाषा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का नाम भी नहीं जानता वो, जो ये कहता है कि सब कुछ ज्ञान रूप है, कुछ भी जानने योग्य नहीं है, ऐसा जो भी कहता है तो वो ज्ञान का अर्थ ही नहीं जानता, नाम भी नहीं जानता। अच्छी ही पिच्छ माणु जीवा जीवादि बहुविहम अत्थम जो भणदि नत्थि किंचिवी सो झुठाणम महाझुठो। अब देखो अन्य मत में एक ऐसी भी मान्यता है कि सब कुछ माया है, सब कुछ झूठा है, बोले जो भी दिख रहा है आंखों से सब झूठा है, कुछ है ही नहीं, शून्यवादी। तो आचार्य क्या कहते हैं, अच्छी ही पिछवाड़ आंखों से देख दिख रही जो वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थ जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, उनको भी जो भणदि जो बोलता है कि किंची भी नथी कुछ भी नहीं है, बोले जो भी दिख रहा है वो कुछ नहीं है, सो झूठाणम महाझूठो, वो झूठों में भी महान झूठा है झूठ बोलने वालों के बीच वो महाअसत्यवादी है, कि जो सामने जो चीज़ है उसको भी बोल रहा है कि नहीं है ये। और फिर एक जगह तो ये भी कहा, देखो शायद आगे भी वो बात आई हो, जम सवम पिय संतम तासो वि असंतो कहम होदी नत्थित्ति किंचितत्तु अहवा सुन्नम कहम मुनदी। बस वही बात आ गई जो हम अभी हमारे मन में आ रही थी, वही बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, जम सवम पिय संतम तासो वि असंतो क्या मतलब है उसका, जम सवम पिय संतम यदि सब कुछ होते हुए भी तासो वि असंतो फिर भी वह नहीं है। टीका देख लेते हैं, अपिच दूषण अंतर है, फिर एक दूसरा दूषण देख लीजिए क्या है, यत सर्वम विद्यमानम गृह गिरिधरा गृह गिरिधरा जलादिकम विद्यमानम अस्ति, जो सब कुछ विद्यमान है, घर गिरि यानि पहाड़, धरा यानि धरती और जल आदि विद्यमान है, तासोवि तस्यापि असत्वम अविद्यमानत्वम कथम भवति, जब सब कुछ है सामने तो फिर वो नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। अथवा तत्तो ततः तस्मात् किंचित नास्ति इति, और उसके मत के अनुसार कुछ भी नहीं है, इति शून्यम कथम मनुते, तो ऐसा शून्य कैसे माना जा सकता है, वो कैसे जानता है, स्वयं विद्यमान सर्वम नास्ति इति कथम वेत्ति, वो खुद तो है, जो कह रहा है कुछ नहीं है वो है कि नहीं। आचार्य महाराज पूछ रहे हैं, तुम बोलते हो कि शून्य है सब कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा तुम कह रहे हो, तो फिर तुम हो कि नहीं पहले ये बता दो। जो कहने वाला है कि कुछ नहीं है वो कहने वाला है कि नहीं ये बताओ, अगर वो है तो फिर कुछ नहीं है ये बात तो झूठी हो गई। देखो कहां से, मतलब उसी की बात में से पकड़ करके उसका निराकरण कर दिया। ये बहुत बड़ी कला होती है जैनाचार्यों की, कि यानी सामने वाला कह रहा है, अपन अपने प्रमाण नहीं दे रहे, वही जो कह रहा है उसी में से उसकी बात गलत सिद्ध हो रही है। वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है सब मिथ्या है, माया है, जाल है। बस यही जिसको ज्ञान हो जाता है कि कुछ भी नहीं है वो ज्ञानी जीव है, ऐसा उनके मत की मान्यता है कि जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ झूठा है, ऐसा जो समझ ले वो सच्चा है, वो ज्ञानी है, ऐसा मानते हैं। तो जैनाचार्य उससे पूछ रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, तुम हो कि नहीं? यदि तुम ऐसा कहते हो कि कुछ भी नहीं है और तुम हो, तो फिर तुम्हारी बात कहां सच्ची रही, तुम्हारी बात ही झूठी हो गई। और सब शून्य कैसे होगा? यदि सर्वमपि असंतम तासो व्यसंतो कहम भणदि नथित्ति किंपि तच्चम अहवा सुन्नम कहम मुणदि। आप भी पुनः और भी कह रहे हैं कि यदि चेत सर्वम चेतनादि लक्षणम तत्वम असत नास्ति रूपम, यदि सारे पदार्थ चेतनादिक लक्षण वाले अविद्यमान है, नास्ति नहीं है, तो तरही तो फिर सोपि नास्तिकतावादी, वो भी नास्तिकवादी मतलब सबको नहीं मानने वाला, अविद्यमान तत्वम भणति, वो फिर जो कह रहा है वो कि ये कपड़ा कुछ नहीं है, ये धरती कुछ नहीं है, तो फिर वो नाम कैसे ले रहा है उनका? कपड़ा धरती आदि ये लिस्ट कहाँ से उसके पास आ गई? जब कुछ है ही नहीं तो फिर उसके पास ये सूची कहाँ से तैयार हुई कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ों के नाम उसको कहाँ से मालूम पड़े? जो थे ही नहीं उसके नाम उसको कैसे ज्ञान में आ गए? यदि पूर्वम घटपटादिकम जगति नोपलब्धम तरही नास्ति इति तेन कथम भण्यते थे, तो जो चीज नहीं है उसके बारे में वो कैसे कह रहा है कि ये चीज नहीं है, उस चीज का नाम कैसे ले सकता है? प्रतिषेध से विधि पूर्वकत्वात्, क्योंकि निषेध उसका होता है जो चीज मौजूद हो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि ये है या नहीं है या ऐसी है वैसी है, और जो चीज है ही नहीं उसके बारे में वो कैसे बोलता है कि ये कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है, तो कपड़ा वगैरह ये कहां से बोला उसने? ये कह रहे हैं अथवा प्रकारांतरेण दुष्येति किंचित तत्वम नास्ति इति चेत तरी सर्व शून्यम कथम जानाति, यदि कुछ भी नहीं है तो फिर सब कुछ शून्य है, ऐसा उसको कैसे मालूम, कैसे जानता है वो? अब फिर इसको समाप्त करते हुए कह रहे हैं क्योंकि ये सब अन्य मतों की अलग अलग प्रकार की मान्यता है, वो एक प्रकार से जैसे जिद्दी लोग अपनी जिद्द पर अड़ जाते हैं, उसी प्रकार जैन मत से तो निकली हैं सारे, प्राचीन सबसे पुराना क्या था, और वो भी सिर्फ हुंडा सर्पणी में होते 363 मत, और कहीं किसी काल में नहीं होते, और फिर कहीं विदेह क्षेत्र में भी नहीं होते, वो सिर्फ यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में हुंडा सर्पणी काल के दोष से ये अलग अलग मत मतांतर पैदा होते हैं, और आज पंचम काल के दोष से तो जैन मत में भी मत मतांतर हो गए, वरना वो अपने आप को जैन कह रहे हैं, ये खूबी है पंचम काल की। चतुर्थ काल में ऐसा नहीं था, चतुर्थ काल में अन्यमति अपने आप को अन्यमति कहते थे और जैन लोग जैन थे, लेकिन आज क्या है कि जैन होते हुए भी वो अन्यमति हो गए, ये स्थिति बनी है, हुंडा सर्पणी का दोष है ये काल दोष, वो भी पंचम काल का दोष, ऐसा इसमें उत्तर पुराण आदि तिलोय पंडित ग्रंथों में दिया है कि ऐसी बहुत सारी जैन मतों में भी शाखाएं बन जाएगी, वो अपने आप को जैन मानते हुए भी रहेंगे अन्यमति के समान, क्योंकि एकांतवादी होंगे। किम बहुणा उत्तीर्णय जित्ती मेत्ताणि संति नामानि तृतीय मेत्ता अथा संति यणियमेण परमत्था। अब ज्यादा कहने से क्या लाभ है? जित्ती मेत्ताणि संति नामानि, जितने मात्र नाम हैं, माने जितने नाम हैं संसार में, तृतीय मेत्ता अथा संति नियमेण, नियम से उतने ही पदार्थ हैं, परमत्था ये निश्चित समझना कि जितने नाम हैं उतनी वस्तुएं हैं, क्योंकि बिना वस्तुओं के नाम थोड़ी होता है किसी का। नाना धम्मे ही जुदम अप्पाणंतः परं पिणिच्छयदु जो जानी दिसजो जम जानी दिसजोगम तम नाणं भण्यते समये। नाना धम्मे ही जुदम, विभिन्न प्रकार के गुण धर्मों से युक्त अप्पाणम अपने आप को, परम्पि तह उसी प्रकार पर को भी, जम निश्चय दो जानी दी जो निश्चय से जान लेता है, तम समय नाणम भण्य दे उसको आगम में ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वो ज्ञान किस प्रकार जानता है तो बोले सजोगम, अपने योग्य पदार्थों को जानेगा। अब जैसे आँख है वो अपने योग्य पदार्थ को जानेगी, वो किसी वस्तु की खुशबू को नहीं जान सकती, कान किसी के स्वाद को नहीं जान सकता, खुशबू को नहीं जान सकता, स्पर्श को नहीं जान सकता, कान तो स्वर को पहचान सकता। तो क्या कहा, ज्ञान की परिभाषा क्या दी कि अनेक गुणधर्मों से युक्त अपने को और पर को भी जो निश्चय से अपने योग्य जानता है, अपने योग्य ये शब्द महत्वपूर्ण है, जानता है, उसको शास्त्रों में ज्ञान कहा जाता है। जम सवम पिपया सदी दव्वम पज्जाय संजुदम लोयम तहय अलोयम सव्वम तम नाणम सव्वपच्चखम। अब एक ऐसा भी ज्ञान है जो किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है माने सबको जानने में समर्थ होता है, सव्वपच्चखम सबको प्रत्यक्ष करने वाला ज्ञान होता है एक। जम सव्वम पे पयासदी जो सबको प्रकाशित करता है, सबको यानी दव्य पज्जाय संजुदम लोयम तहे अलोयम सव्वम, द्रव्य और पर्यायों से युक्त लोक को और उसी प्रकार सारे अलोक को भी जो प्रकाशित कर डालता है वह सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान होता है। सव्वम जानदि जम्मा सव्वगयम तम पिबुच्यते तम्मा नयपुण विसरदि नाणम जीवम चयूण अन्नथ। चूंकि जम्मा जम्मा यानी चूंकि सव्वम जानदि वो सबको जानता है केवल ज्ञान, इसलिए व्यवहार से क्या कहते हैं सव्वगयम, वो सर्वगत है। सर्वगत यानी सबको प्राप्त करने वाला, यानी लोकालोक में विस्तृत वो ज्ञान है, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। तम्पि वुच्यते उसको भी इसी कारण से सर्वगत कहा जाता है। नयपुण विसरति नाणम, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, निश्चय से क्या है कि जीवम चयूण जीव को छोड़कर अन्यत्र नाणम नयपुण विसरति, ज्ञान कहीं अन्यत्र विस्तृत नहीं हो रहा है। ज्ञान कहाँ है, केवली भगवान का केवल ज्ञान कहाँ पर है। उसने लोक और अलोक को जाना इस अपेक्षा से व्यवहार नए द्वारा कहा जाता है कि वो लोकालोक में फैल गया, लेकिन वास्तव में निश्चय से विचार करें तो ज्ञान आत्मा को छोड़कर कहीं बाहर नहीं फैल सकता। माने केवली भगवान का ज्ञान केवल ज्ञानी के ही आत्मा में पाया जाएगा, उसके बाहर कहीं भी जाएगा नहीं। वो पदार्थों को जानता है इस अपेक्षा से ऐसा कथन होता है कि लोकालोक में फैल गया। बोलते हैं ना कि कोने कोने तक मेरी नजर है, बच्चे से माँ बोलती है कि कोने कोने तक मेरी नजर है, तू क्या कर रहा है मुझे सब पता है, भले मेरे पीठ पीछे करता हो। तो वो एक कथन शैली है। उसी प्रकार केवल ज्ञानी के ज्ञान को क्या कहते हैं, लोकालोक में फैला हुआ है, सर्वगत है, ये भी एक कथन शैली है। वास्तव में ज्ञान आत्मा के सिवाय और कहीं भी विस्तृत नहीं हो सकता। नाणम न जादिनीयम नियम पिण जादि नान दे सम्मी नियणीय देशठियाणम व्यवहारो नाननीयाणम। देखो बहुत सुंदर खुलासा कर रहे हैं ज्ञान के बारे में कि नानम न जादि नियम, ज्ञान जो है वो ज्ञेय पदार्थ तक नहीं जाता और नियम पीण जादि नान देशम में, और ज्ञान के स्थान पर ज्ञेय भी नहीं आता, जानने योग्य पदार्थ ज्ञान में नहीं जाता, ज्ञान उस पदार्थ में नहीं जाता। नियणीय देश ठियाणम, अपने अपने ठिकाने पर वो स्थित रहते हैं, ज्ञान अपनी जगह रहता है और जानने योग्य पदार्थ अपनी जगह रहता है, लेकिन व्यवहार और नाननीयाणम, लेकिन ये व्यवहार चलता है कि ज्ञान ने ज्ञेय को जान लिया, प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया भी बोलते हैं, तुम्हारी बात पकड़ ली मैंने, मतलब मेरी समझ में आ गई, अब तुम्हारी बात पकड़ में आई बोलते हैं ना, तो वो एक भाषा है बोलने की, लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ अपनी जगह है और अपना ज्ञान अपनी आत्मा में है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान ज्ञेय संबंध बन जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि निश्चय से आत्मा पर को नहीं जानता, ये तो फिर और गहरी बात हो जाएगी, इसके बारे में अपन फिर चर्चा करते हैं, पहले ये विषय पूरा हो जाए फिर इसका भी खुलासा करेंगे। जब चूंकि निकल गई हमारे मुंह से वो बात, इसलिए आपके दिमाग में घूमेगी कि निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता, ये एक बहुत समझने की बात है। अभी तो अपन यहाँ चर्चा चल रहे हैं, मणपत जय विन्नाणम ओहीणाणंच देश पच्चखम मधुसुदिनाणम कमसु विशद परोखम परोखंच। मन परे विज्ञान यानी ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष होते हैं। सर्व पच्चक जो आया था पहले, केवल ज्ञान, सर्व प्रत्यक्ष नहीं होते, देश प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि कुछ सीमा होती है इनकी, इसलिए सबको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और मधुसुदी नाणम, मति और श्रुति ज्ञान, क्रम से मति ज्ञान विशद परोक्ष होता है और श्रुति ज्ञान परोक्ष होता है। विशद परोक्ष का मतलब पराधीन होते हुए भी, जिसको लोक में बोलते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है। उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष कहा है, उसको न्याय ग्रंथों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय ग्रंथों में इसका मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। वो एक प्रकार का लौकिक प्रत्यक्ष माना जाता है मति ज्ञान को, इसलिए उसको विशद परोक्ष